ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 21। राजो उवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम् किं जान्मि व्यस्त्वे परराप्मुष्मिनम् न यादृशी केश यश कृतात्मना महात्मनां वा प्रचुर समागम। अहो निजन्माखिलि जन्म शोभनम् किं जन्म भीतो अपरे अपि मुष्मिनम् न यादृशी केश यश कृतात्मनाम् महात्मनं वा प्रचुर समागम। अहो निजन्माखिल जन्म शोभनम् किं जन्म भीतुपेरे अपि अमुष्मिनम् न यादृशी केश यश कृतात्मनाम् महात्मनं वा प्रचुर समागम। राजा उवाच। राजा रहुगण ने कहा अहो ओ नृजन्म मनुष्य का जन्म लेने वाले तुम अखिल जन्म शोभनम सर्व योनियों में श्रेष्ठ किम क्या आवश्यकता जन्म भी स्वर्ग लोकों के देवता जैसी उच्च योनि में जन्म लेने से तू लेकिन अपरे निकृष्ट अपि निसंदेह अमुष्मन अगले जन्म में न नहीं या जो ऋषिकेश यश समस्त इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से कृत आत्मानाम जिनके हृदय विमल है शुद्ध अंतकरण वाले महात्मानाम महात्माओं की व हम सब की प्रचुर अत्याधिक समागम संगति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। राजा रघुघ्न ने कहा यह मनुष्य जन्म सारे योनियों में श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं है जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ। स्वर्ग लोक में अधा भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तात्पर्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान सु अवसर होता है। चाहे वो कोई स्वर्गलोक में देवताओं के बीच में जन्म क्यों ना हो, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण उसे भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर भी जो ऐश्वर्यवान हैं वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चंगुल से मुक्त होना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। इस संगति से वो क्रमशः धन और स्त्री के आकर्षण से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व है धन और स्त्रियां। अतः चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि जो भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं उन्हें धन और स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे वो ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। धन और स्त्रियों का पूर्ण उपयोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा करता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। भक्तों की संगति में रहकर भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्त की किंचित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साअवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौर्द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम राम रामो हरे। अधिक मास में अधिक आवाज से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि हम अधिक मास में यहाँ पर वृंदावन धाम में हमें कुछ समय के लिए बिताने का अवसर मिल रहा है। वृंदावन धाम सारे धामों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और विशेष करके इस महीने में जो भी आध्यात्मिक क्रिया का पालन किया जाता है, श्रवणम कीर्तनम या भगवान की कोई सेवा, उसका हजारों गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम सब से निवेदन करते हैं कि इस महीने में अभी और 10 दिन बचे हैं, आज 3 तारीख है तो 13 तारीख तक 11 दिन और हैं, तो हर क्षण का उपयोग भगवान के नाम स्मरण में करें, क्योंकि वास्तव में सारे धर्म का सार जो है भगवान के नाम का आश्रय लेना है। करी काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत उद्धार। इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए और सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण नाम के जप और कीर्तन से होता है। तो जो भी दिन बचे हैं हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आज ये जो हम कथा पढ़ रहे हैं, महाराज रहुघ्न और जड़ भरत के बीच में संवाद, ये बहुत पवित्र करने वाला। जब भी कोई दो महात्माओं के बीच में संवाद होता है उसको सुनने से हम शुद्ध बन जाते। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कृष्ण के संदेश की प्राप्ति होती। शुकदेव गोस्वामी ने गंगा जी के किनारे शुक्रताल में परीक्षित महाराज को उपदेश किया और सुनने वालों में से एक महान भक्त सूत गोस्वामी, बाद में उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में उपदेश किया। तो हम देखते हैं कि ये कृष्ण कथा जो है वो भी भगवान का ही एक रूप है। कलयुग का तेज इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल है अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए रखना। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि दो चीज़ें हैं जो कलयुग के वेग को कम कर सकते हैं, एक है हरि नाम और दूसरा है कृष्ण कथा। जितना ज़्यादा हम हरि नाम और कृष्ण कथा का आश्रय लेते हैं उतना ही हम कलयुग के वेग से बच सकते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरणागति को प्राप्त कर सकते। इसके पहले के कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा पिछले कुछ क्लासेस में कि महाराज रहुघ्न जड़ भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं और जड़ भरत उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और अब सब प्रश्न सुनने के बाद अब आज के श्लोक में राजा स्वयं कह रहे हैं कि सारे जन्मों में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का अभ्यास कर सकता है, बाकी शरीर में व्यक्ति इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन सिर्फ मनुष्य शरीर में व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और इस तरह से भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर सकते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यह बताते हैं कि दूसरे शरीर हैं जैसे देवता के शरीर हैं वो बहुत पुण्य कर्मों के बाद प्राप्त होते हैं, देवता बनना आसान नहीं है, कई कई जन्मों के पुण्य के फल से कोई व्यक्ति को देवता का शरीर मिलता है, या मान लो उससे भी देवताओं में उच्च इंद्र का शरीर मिलता है या ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है। लेकिन इस देवताओं के शरीर में भी हालांकि शरीर बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इंद्र तृप्ति ज़्यादा है और इंद्र तृप्ति के कारण मन को भगवान में केंद्रित करना मुश्किल है। एक बार श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर मायापुर में सड़क पर चल रहे थे कुछ भक्तों के साथ, और चलते चलते ऊपर देखकर दुख प्रकट करने लगे। किसी भक्त ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? बोले, देखो ऊपर चंद्रलोक में भी लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं। वो चंद्रलोक को भी देख सकते थे कि ऊपर क्या चल रहा है। फिजिकली सब लोकों में इंद्र तृप्ति रहती है, आहार निद्रा भय मैथुन, चाहे वो स्वर्गलोक हो या नागलोक हो। लेकिन मनुष्य शरीर में हालांकि इंद्र तृप्ति के साधन भी हैं, लेकिन भगवान ने स्थिति ऐसी रखी है कि थोड़े दुख भी है थोड़ा सुख भी है। इतना दुख भी नहीं है कि भक्ति नहीं कर सकें, और इतना सुख भी नहीं है कि भक्ति को भूल जाएं। वह प्रॉपर बैलेंस है, बिल्कुल सही मात्रा में सब कुछ दिया है। जनरली जब व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है, मनुष्य शरीर में भी जब बहुत धनी होते हैं, उनके लिए भक्ति करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परत चेतसा, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हैं उनके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। कोई महान साधु के दर्शन हो जाए और उनके संग से भक्ति बढ़ सकती है। जैसे राजा, हम प्राचीन आभारिषि की कहानी सुनते हैं, कैसे नारद मुनि के संग से वो भक्ति में उत्सुक हुए। मनुष्य शरीर में भी जिस व्यक्ति को भक्तों का संग मिले वो और भी दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो मनुष्य शरीर में भी, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद उसमें भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है। एक सद्गुरु के दर्शन होना और मार्गदर्शन को प्राप्त करके भक्ति के मार्ग पर लगना, और ये सब सौभाग्य जो लिखा है बहुत दुर्लभ है, वो इस कमरे में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को ऑलरेडी मिल गया है। आप सब मनुष्य शरीर में हैं, शायद कोई देवता हो पता नहीं, मेजॉरिटी मनुष्य हैं यहाँ पर। आप सबको मनुष्य शरीर मिला है, और आप सबको प्रभुपाद जैसे आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन मिला है, और साथ साथ आप सबको वृंदावन धाम में भी प्रवेश मिला है। अब हमारे ऊपर है हम कितना इसका लाभ उठाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को एक वरदान दिया, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया अंग्रेजी में, और जो भक्तों ने बहुत कड़ी मेहनत की, प्रभुपाद जी चाहते थे कि 2 महीने में ही पूरी पुस्तक तैयार हो जाए, किताब का अनुवाद करना, ट्रांसलेशन, उसको शोध करना, उसमें एडिटिंग करना और पेंटिंग्स बनाना और प्रिंटिंग कराना और बाइंडिंग कराना, ये सब चीज़ें 2 महीने में तैयार चाहिए, प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी। तो भक्तों ने कहा, प्रभुपाद ये असंभव है, इम्पॉसिबल। और श्रील प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी बोले, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति है जो असंभव कहता है, कुछ असंभव नहीं। और प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कड़ी मेहनत से 2 महीने में पुस्तक तैयार हो गई। हमारे लिए 2 महीने में पढ़ना भी मुश्किल होता है, 2 महीने में अनुवाद करना, उसका सब शोधन करना, पेंटिंग्स, हर एक बुक में करीब 15 पेंटिंग्स, 17 बुक्स थे। और फिर प्रभुपाद जी ने वरदान दिया कि जिन भक्तों ने ये मेहनत की थी इस पुस्तक को छापने के लिए, वो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। उसमें करीब 25 भक्त थे वो टीम में। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद जी के जाने के बाद उस 25 में से करीब 5 या 8 भक्त भक्ति के मार्ग से अलग हो गए। तो मैंने प्रश्न पूछा एक महाराज से, जो देवामृत स्वामी महाराज, जो उस टीम में से एक थे, 25 में से एक थे। मैंने पूछा कि प्रभुपाद जी ने तो वरदान दिया था कि ये सब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये तो भक्ति छोड़ दिए। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि मान लो मैं आपको टिकट देता हूँ, कन्फर्म टिकट, आपके पास यहाँ टिकट है, आज आप बैठ सकते हैं ट्रेन में, यहाँ से राजधानी शाम की ट्रेन में बम्बई जाने का टिकट है, कन्फर्म है, आपके हाथ में है, लेकिन मान लो आप जाते ही नहीं हैं स्टेशन में, या टिकट को फेंक देते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता? जब हम गुरु से मिलते हैं या वैष्णव से मिलते हैं, मतलब तो अवसर तो मिल गया भगवत भक्ति का, लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कोई कोई भक्त हैं जो भक्ति में आते हैं और पहले बहुत प्रगति करते हैं एक दो साल, फिर बाद में उनको लगता है कि इतनी जल्दी क्या है, दुर्घटना से देर भली, यू नो। पहले पहले बहुत उत्साह होता है, हर मंगल आरती में आना है, रोज़ सुबह जप करना है, रोज़ भागवत सुनना है, फिर दो चार साल बाद लगता है अरे वही महामंत्र बार बार, इतनी क्या जल्दी है, वही क्लास सुनना, और मैं मंगल आरती में नहीं भी आया कोई बात नहीं, दर्शन आरती में भगवान तो वही हैं, क्या फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे फिर उत्साह कम हो जाता। इसीलिए आज प्रभुपाद तात्पर्य ने बोल रहे हैं कि भक्तों की संगति की बहुत ज़रूरत है, उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए, उत्साह को बनाए रखने के लिए। कोई भक्त होते हैं जो लगातार उस उत्साह को बनाए रखते हैं, और कोई होते हैं जो पहले बहुत धीरे होते हैं और बाद में तेज होते हैं। उत्साह को बनाए रखना, स्टेडी इंथुजियाज्म, ये बहुत जरूरी है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद मुंबई में थे और समुद्र के किनारे सवेरे टहल रहे थे, और जैसे ही प्रभुपाद जी टहलने के बाद कार में बैठने गए तो एक भक्त दौड़ते हुए आए, और प्रभुपाद जी दरवाज़ा बंद कर रहे थे, दरवाजे और प्रभुपाद के बीच में दंडवत प्रणाम कर दिए, प्रभुपाद रुक जाएं। प्रभुपाद मेरा प्रश्न है। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्या प्रश्न है? उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि भगवान के धाम जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या योग्यता है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है भगवत धाम जाने के लिए? आप में से कोई बताना चाहेगा क्या प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे? सब चीज़ें अच्छी हैं, पुस्तक का वितरण, और लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? डिज़ायर, इच्छा, बहुत स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए कि बस मुझे इसी जन्म में भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। जैसे ध्रुव महाराज के अंदर डिटर्मिनेशन, ध्रुव महाराज आप जानते हैं कथा, जब उनकी सौतेली माँ ने गलत व्यवहार किया तो वो निकल पड़े, उनकी मदर ने बताया आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त, भगवान के पास जाओ। पूछा भगवान कहाँ है? कई लोग जंगल में जाते हैं भगवान की खोज में, और तुरंत ध्रुव महाराज निकल पड़े। उनका रास्ता पता नहीं था, ऐसे नहीं उनके पास गूगल मैप्स था देखने के लिए कहाँ पे राइट करना है, लेफ्ट रखना है, बस वो निकल पड़े। रास्ते में नारद मुनि मिले, क्योंकि भगवान गुरु को भेजते हैं, इसलिए हम अपनी शक्ति से गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते। जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव बहुत उत्सुक है प्रगति करने के लिए, तो भगवान एक सद्गुरु को उसके पास भेजते हैं। नारद मुनि ने परीक्षा ली, ध्रुव तुम ये छोटी उम्र में, 5 साल उम्र है, जंगल जानते, जंगल में सांप शेर कितने बाधाएं होते हैं, और जंगल में ऐसे 9 बजे 3 बजे प्रसाद फिक्स नहीं होता, जंगल में कोई सुविधा नहीं होती, कोई पंखे नहीं होते, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। नारद मुनि ने कई बार उसको रोकने का प्रयास किया, ध्रुव महाराज डिटरमिनेंट थे, बोले या तो आप मुझे मदद करो या मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे दृढ़ निश्चय ध्रुव। और तब नारद मुनि ने उनको प्रेम से उपदेश किया कि आप मधुवन में जाओ, भगवान के विग्रह की सेवा करो, और ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करो। दृढ़ निश्चय ध्रुव महाराज का दृढ़ निश्चय था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, और धीरे धीरे वो भक्ति की जो कठोरता है, जो दृढ़ता है, उसको बढ़ाते जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अपने आप को देखते रहना चाहिए कि मैं क्या मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ या पीछे की ओर जा रहा हूँ। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये जो भौतिक इच्छाएँ हैं ये कम हो रहे हैं या बढ़ हो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत बुखार हो गया, ज्वर हो गया 104 डिग्री, और डॉक्टर की दवाई ले रहा है, तो कैसे जान सकते हैं कि दवाई का कार्य हो रहा है कि नहीं? उसका तापमान जो है वो कम होना चाहिए, बीमारी कम होनी चाहिए। और अगर दवाई ले रहे और तापमान बढ़ रहा है मतलब कुछ गलती है, दवाई ठीक से नहीं ले रहे या दवाई कार्य नहीं कर रहे। तो तापमान भौतिक तापमान है, भौतिक इच्छाएं, स्पेशली प्रभुपाद जी लिखते हैं आज के तात्पर्य में धन स्त्री मान सम्मान ये प्राप्त करने की इच्छाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं। रूप गोस्वामी के उपदेश में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कभी कभी हम भक्ति लता के बीज को पानी डाल रहे हैं, जो भक्ति के बीज जो गुरु ने हमारे हृदय में डाली है तो वो पानी हम डाल रहे हैं लेकिन पौधा उगता नहीं है क्योंकि पानी जड़ में नहीं जा रहा और आसपास जो दूसरी जो घास है उसमें पानी चला जा रहा है। तो श्रवण हम कर रहे हैं 16 माला 32 माला कर भी रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक निरीक्षण नहीं कर रहे तो सारा जल कहीं और जा रहा है। और हम देखते हैं कुछ 5 साल 10 साल बाद हमारी इच्छाएं बढ़ने लग जाती, विशेष करके प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा या धन प्राप्त करने की इच्छा या स्त्री के लिए पुरुष पुरुष के लिए स्त्री, ये इच्छाएं बढ़ने लग जाती। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति का मार्ग जो है तो बहुत सरल लेकिन साथ साथ शूरस से धारा, इसमें रेजर्स एज की तरह, इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो घाव भी हो सकता है। एक बार प्रभुपाद जी की उपस्थिति में कुछ सीनियर भक्त जिन्होंने कई वर्ष प्रभुपाद जी की सेवा की थी, जो सन्यासी रह चुके थे, वो भक्ति के मार्ग को छोड़कर अलग हो गए। प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता था, प्रभुपाद जी रोते थे जब कोई भक्त छोड़कर जाता। एक भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद हाउ डिड दिस सीनियर डिवोटी लीव, ये इतने वरिष्ठ भक्त हैं वो कैसे भक्ति छोड़कर चले गए। श्रील प्रभुपाद जी बोले, डू नॉट बी सरप्राइज एट हु लीव्स, बी सरप्राइज एट हु स्टेज। कोई छोड़ के जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन जो टिका रहे वो आश्चर्य की। जैसे आज आप जानते हैं पिछले एक महीने भारत के अनेक भाग में बहुत सारे आंधी और तूफान आए। मैं एक महीने करीब पहले मैं शुक्रताल में था और वहाँ से मैं हरिद्वार जा रहा था, इतने तूफान रास्ते में 10-12 जगह पर पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हुए हैं। जब ऐसे तूफान चलते हैं तो बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, लेकिन कोई पेड़ बहुत ही अच्छी जड़ वाला है तो वो तूफान आने पर भी विचलित नहीं होता। ऐसे जब माया की तूफान चलती है, आंधी आती है, तो कई बड़े बड़े भक्त भी भक्ति के मार्ग से अलग हो जाते। कुछ ये निश्चित है कि वापस आएंगे, जो भक्ति से अलग भी हुए हैं वो इसी जन्म में या अगले जन्म में वापस आएंगे, लेकिन जो सुदृढ़ हैं, जिन्होंने साधना का पालन बहुत कठोरता से किया है, जिसके 4 भाग प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, 4 भाग हैं। पहला है सवेरे जल्दी उठना, जल्दी मतलब जैसे मैंने एक मित्र को जल्दी उठना अमेरिका में, बोले हाँ मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ, गुड मॉर्निंग है ना, जल्दी उठना मतलब 4 बजे। और सेकेंड बोलते हैं प्रभुपाद अटेंड मंगल आरती, इतना अच्छा लग रहा था आज मंगल आरती में, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, न केवल वृंदावन के भक्त, कई दिल्ली से कई भागों से भक्त आए हैं अधिक मास का अधिक लाभ लेने के लिए। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्यानपूर्वक 16 माला जप करना। आज मैं स्वयं अपनी कमी बता रहा हूँ जिससे आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि आज मैं जप कर रहा था, किसी कारणवश आप जानते हैं वृंदावन में गर्मी बहुत है, उस कारण कभी कभी नींद नहीं हो पाती, तो आज जप में नींद आ रही थी, इतना संघर्ष हो रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आप हरे कृष्णा मंत्र बोले तो कृष्ण साक्षात नृत्य कर रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। राधा श्याम सुंदर ऑल्टर पे जाने के लिए इतना संघर्ष होता है, आप देखते इतनी भीड़ होती है, मैंने कोई भक्त को नहीं देखा कि राधा श्याम सुंदर के सामने देखते देखते नींद आ जाए, ऐसा हुआ है कभी वृंदावन इस्कॉन के इतिहास में? कभी नहीं हुआ। लेकिन वही राधा श्याम सुंदर, हरे यानी राधा रानी और कृष्ण मतलब श्याम सुंदर, हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे। तो आज का प्रवचन मैं अपने आप को सुधारने के लिए दे रहा हूँ कि मुझे और डिटर्मिंट बनना है भक्ति में, सिर्फ भगवे कपड़े पहनने से या दीक्षा लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, दृढ़ निश्चय होना चाहिए ध्रुव महाराज की तरह कि मुझे साधना भक्ति करनी है, मुझे सवेरे उठ के भगवान का नाम लेना ही है, मुझे भागवत श्रवण करना ही है। या हम श्रवण नहीं कर पाए तो पढ़ें या फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर सुने। महाप्रभु ने तरीका बहुत आसान कर दिया है, लेकिन उस आसान तरीके को भी ग्रहण करना होगा। कोई एक डॉक्टर है, उसने देखा पेशेंट के लिए दवाई बहुत सरल दवाई दी है, बस गोली लेनी है, और डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं। डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं फ्री में दवाई दे रहा हूँ। फिर बोलते प्रभु डॉक्टर दवाई तो अच्छी है फ्री में, लेकिन मेरे को लेने की इच्छा ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्या कर सकते। तो प्रभुपा जी ने हमें दवाई दे दी है हरि नाम दवाई, और वो भी फ्री में दवाई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 16 माला का 2000 रुपये चार्ज लगता है। अगर ऐसा होता तो शायद लोग ज़्यादा सीरियसली लेते, क्योंकि कोई चीज़ आसान से मिलती है तो हम भूल जाते। इस इज द हाइएस्ट थिंग। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन से आए। कल मैं गौर गोविंद महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भगवान का नाम कैसे लेना है। प्रेम नाम माला, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं प्रेम नाम माला ग्रहण करो। नाम तो हम कर रहे हैं, प्रेम से लेना। तेषाम से तथा युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से नाम लेना, प्रेम से। और गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो विरह भाव में भगवान को पुकारना है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, हे राधा रानी, हे कृष्ण आप कहाँ पर हो, क्या आप गोवर्धन में हो, क्या आप राधा कुंड में हो। हमारे शरण गोस्वामी इस तरह से भगवान को पुकारते थे। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं हम राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, कब मुझे कृपा मिलेगी, कब कब मैं शुद्ध बनूंगा, कब मुझे नाम में रुचि आएगी। हमारे पूर्वज आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे भजन में बोलते हैं, कबे अबे बोलो से दिनामा, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल होबे हृदय संचार। इसका अनुवाद है कबे हबे बोलो से दिन, वो दिन कब आएगा जब मेरे नाम में अपराध दूर हो जाए, शुद्ध नाम जागृत। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमें डिटर्मिनेशन से दृढ़ निश्चय से नाम लेना है, अपराध से दूर होकर। अपराध शून्य हो लबे कृष्ण नाम, प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, जीवा से तो कर रहा हूँ लेकिन शुद्ध नहीं कर रहा। नामाक्षर है कृष्ण नहीं है, नाम के अक्षर तो उच्चारण हो रहे हैं लेकिन क्या वास्तव में कृष्ण की अनुभूति हो रही है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो गंभीरा एक छोटा सा कमरा है, आप इसे कितने भक्तों ने देखा है जगन्नाथपुरी में, गंभीरा एक छोटा सा कमरा, और महाप्रभु वहाँ बैठ कर रुदन करते थे, हमेशा रोते थे भगवान के। हा हा कृष्ण मुरली वदन, कहाँ गेला कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, कृष्ण कहाँ पर हैं, कृष्ण कहाँ पर हैं। कभी कभी तो वो रात में सोते नहीं थे, अपने मुंह अपने नाक को दीवार से रगड़ रहे होते, कभी खून आ जाता था इतने विरह में, कृष्ण कब कृष्ण मिलेंगे। कभी कभी दरवाजे बंद होते और भक्त देखते भगवान कहाँ पर हैं, तो सिंह द्वार के पास कूर्मा आकार में है, इसे विरह में भगवान को पुकारते। जब चैतन्य महाप्रभु गया में गए, गया में अपने पिताजी का श्राद्ध करने गए तो ईश्वरपुरी के दर्शन हुए, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। ईश्वरपुरी को देखकर ही चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे, गया यात्रा सफल हैल अमार, आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई। मैं आया था पिंड दान करने अपने पिताजी के लिए, इस स्थान पर गया में आकर जिस व्यक्ति के नाम से आप पिंडदान करते हो उसी को लाभ होगा, उसी का उद्धार होगा, लेकिन आप जैसे साधु महापुरुष को देखने से हजारों हजारों पूर्वजों का उद्धार हो जाए। सबसे बड़ा तीर्थ वह है जहाँ एक वैष्णव के चरण कमल, जहाँ पर एक वैष्णव रहते हैं वही स्थान वृंदावन है, वही नवद्वीप है, वही जगन्नाथपुरी है। जहाँ पर वैष्णव रहते हैं वहाँ कोई भी पर्वत हो वो गोवर्धन है, वहाँ कोई भी नदी है वो यमुना है। महाप्रभु इस तरह से अपने गुरुदेव का गुणगान करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे ही कहते हैं, गंगार परहशहिले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार। गंगा जी में हरिद्वार ऋषिकेश आप स्नान करो तो पवित्र होते, लेकिन वैष्णव, वैष्णव की महिमा गंगा से भी ज्यादा है कि वैष्णव जो है वो दर्शन से ही पवित्र कर देते। जब गंगा माता को धरती आने के लिए निवेदन किया, गंगा माता तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा दो समस्याएं हैं, एक तो मेरा वेग, ना वेग है, अगर मैं पूर्ण वेग से आए तो पूरा सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, सब समान बन जाएगा, टू स्टोरी फोर स्टोरी मल्टी स्टोरी जीरो स्टोरी सब सब बराबर हो जाएगा। और तब बताया, तब शिव जी भोलेनाथ शंकर जी वो तैयार हो गए कि मैं गंगा को अपने जटाओं पे धारण करूँगा, क्योंकि शिव जी जानते हैं गंगा की महिमा, इसीलिए वो गंगा को धारण करते हैं। आपसे कोई बोले प्रभु ये 10 किलो ये कांच के टुकड़े हैं ये जरा आप उठा के ले जाइए, तो शायद कोई कहे प्रभु जी 10 किलो कांच का कांच है डब्बा उठा के ले जाता, बोले प्रभु जी इतना भारी कौन उठाएगा, लेकिन कोई बोले 10 किलो गुलाब जामुन उठा के ले जाने, तो आप बड़े प्रेम से ले जाएंगे, रास्ते में हल्का भी करते हुए जाएंगे बांटते हुए भी और खाते हुए भी, है ना। तो शंकर जी जानते हैं कि गंगा की क्या महिमा है, गंगा के दर्शन मतलब साक्षात भगवान के दर्शन है। कल मैं ब्रह्म व्यवहारत पुराण में पढ़ रहा था कि गंगा धरती पे आए उसके पहले गंगा जल प्रकट कैसे हुआ, भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में बहुत से भक्त भगवान का गुणगान कर रहे थे और शंकर जी भी थे वहां पर, जब उन्होंने भगवान की स्तुति की उस स्तुति से राधा श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हो गए कि उस स्तुति को सुन के भगवान जल रूप में प्रकट हो गए, सब वहां पर जल ही जल, सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे, और एक आवाज सुनाई पड़ी कि अगर शंकर जी अब कुछ स्तोत्रों की रचना करेंगे तो मैं फिर से राधा कृष्ण के रूप में आऊं। तो एक्चुअली गंगा न केवल चरणामृत है, गंगा स्वयं राधा कृष्ण का रूप है। चैतन्य भागवत में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार पुकारता है गंगा गंगा, आपकी आवाज से लगता है आप लोग पूरा अधिक मास में निर्जल उपवास कर रहे हैं 30 दिन के लिए, जोर से बोलिए गंगा गंगा। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि कोई एक बार गंगा जी का नाम भी लेता है तो उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते थे, वो पुकार रहे थे वृंदावन वृंदावन गोवर्धन गोवर्धन, वो निकल रहे थे राढ़ देश से। नित्यानंद प्रभु ने सोचा यार अगर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए तो फिर ठीक नहीं होगा, तो ने छोटे बच्चों को बोला कि जब महाप्रभु पूछेंगे कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो उनको क्या बताना, शांतिपुर का रास्ता बता। सुप्रीम डायरेक्टर मिस डायरेक्ट कर रहे हैं, ये ना महाप्रभु को गलत रास्ता बता, लेकिन उससे महाप्रभु गंगा के किनारे चल रहे थे, उनको लगा यमुना है। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जब हवा चलती है गंगा से, आप गंगा के किनारे बैठे हो, आप जप नहीं कर रहे, बस बैठे आराम से बैठे हो, मान लो आप बैठे जस्ट हवा स्पर्श कर रही है आपको, तो गंगा को स्पर्श की हुई जो हवा है वो शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली, इतनी गंगा की महिमा है। लेकिन उस गंगा से भी ज़्यादा एक वैष्णव की महिमा, इसलिए वास्तव में मंदिर की शोभा जो है शुद्ध भक्त होते हैं। हमारा सौभाग्य है शिला प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य जो धरती पर हैं उनका सबका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यही वैष्णव का संग जो है वही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव की संगति से ही ये धन और स्त्री के प्रति आकर्षण दूर होता है। कई बार हम सुबह बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम, और फिर 9 बजे फिर धन कमाने जाना ही होता है। एक भक्त मेरे से पूछ रहे थे प्रभु जी हम बोल रहे हैं न धनम न जन्म न सुंदरी, लेकिन फिर धन कमाने जा रहे हैं, इसकी गलती है? मैंने बताया नहीं ये गलती नहीं है, गृहस्थ आश्रम में थोड़े धन की जरूरत होती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि धन एकत्र करना, हमारा उद्देश्य है हरि नाम धन एकत्र करना। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलकर उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, और ईश्वरपुरी बहुत नम्रता से जवाब देते हैं कि निमाई मैं आपसे पहली बार नवद्वीप में मिला और जब से मैंने आपको नवद्वीप में देखा तब से मेरे मन में और कोई विचार आ ही नहीं रहा, सिर्फ आपका रूप मेरे हृदय में समा गया। आप स्वयं कृष्ण के अवतार हो ये मैं जानता हूं। और फिर महाप्रभु दूसरे कार्यों में लग गए, ईश्वरपुरी भी दूसरे कार्यों में थे। गया में अपने पिताजी के लिए पिंड दान करने के बाद जब महाप्रभु लौटकर प्रसाद बना रहे थे, जैसे उन्होंने प्रसाद भोग अर्पण किया भगवान को, दरवाजे पर एक आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजा खोल, साक्षात ईश्वरपुरी प्रेम में उन्मत्त, और नीमाई बहुत प्रसन्नता से स्वागत किए उनका। ईश्वरपुरी मुस्कुराकर बोले, नीमाई मैं बहुत योग्य समय आया, योग्य समय मतलब जस्ट ऑफरिंग पूरा हुआ है। तब नीमाई बोले, आपके लिए प्रसाद है आप लीजिए। लेकिन ईश्वरपुरी बोले, नहीं आपको पता नहीं था मैं आ रहा हूँ, आप जो भी बना रहे हो वो आधा मैं लूँगा आधा आप नहीं। लेकिन नीमाई पंडित ने अपना सारा जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद है सब अपने गुरुदेव को दे दी, ये दिखाने के लिए कि शिष्य को गुरु की सेवा करना परम कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य गुरु को प्रसन्न करना। और दूसरा, भगवान चैतन्यप्रभु भगवान है, ईश्वरपुरी भक्त हैं, भगवान अपने भक्त की सेवा करने में आनंद लेते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक गुप्त स्थान में गए और ईश्वरपुरी के चरणों में निवेदन किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी बोले, आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकूं। वो जानते थे भगवान, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सेवा के रूप में स्वीकार किया और उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगे। हालांकि भगवान तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन जब तक वो ईश्वरपुरी से दीक्षा नहीं लेते तब तक कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान दिखाना चाहते थे, सद्गुरु की कृपा से ही कृष्ण प्रेम मिलता। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तरसना चाहिए, रोना चाहिए, पुकारना चाहिए, हे कृष्ण कब मुझे आपकी कृपा मिलेगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिजायर, इंटेंस डिजायर, लौंडियम, ऐसी इच्छा अगर कोई पूछे कितने लोग कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो सभी हाथ ऊपर कर लेंगे, तो बहुत आसान है। लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए तीव्रता होनी चाहिए, इंटेंस डिजायर, कि उस प्रेम के बिना मुझे सब कुछ सूखा लग रहा है। महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किए तब निकल पड़े वृंदावन की ओर, अपने सारे विद्यार्थियों को बोले कि आप वापस जाओ नवद्वीप में, अब मैं वापस जा रहा हूँ वृंदावन। लेकिन उस समय आकाशवाणी, देवता बोल रहे थे, हे नीमाई पंडित, आपका अवतार हुआ है कृष्ण प्रेम वितरित करने के लिए, आप घर घर में हरि भक्ति बांटोगे, सब जगह पर भगवान का नाम फैलाओगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस समय आप वृंदावन नहीं जाओगे क्योंकि आपका अवतार हुआ कृष्ण भक्ति प्रचार करने के, उसके बाद आप वृंदावन जाना। हम तो आपके सेवक हैं, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हम सिर्फ याद दिला रहे। तो महाप्रभु लौटकर तो आ गए, लेकिन अब उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। वो पाठशाला में भी कृष्ण के बारे में बोलते, कई बार वो पाठशाला में 6 घंटे तक पाठ कृष्ण के बारे में बोलते ही रहे। कोई जो भी प्रश्न पूछता उसका जवाब कृष्ण। वर्णाश्रम का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण ही वर्णाश्रम के जड़ हैं। और 6 घंटे बाद उनको होश आया, फिर भक्तों से पूछा आज कैसा लगा क्लास, बोले आपने कुछ बोला ही नहीं सिवाय कृष्ण के। इस तरह से वो प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगे, जो जीवन का लक्ष्य है कि कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य नजर आए। तो हमारे अंदर लक्षण कैसे आएंगे, कैसे आएंगे वो लक्षण। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, इट्स ओनली पॉसिबल बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में नाम लेने से। नाम को अपने जीवन का सर्वस्व बना लेना, नाम ही सब कुछ है। बिना नाम रुचि के मनुष्य जीवन बेकार है। हो सकता है आपको कुछ सफलता मिल जाए भौतिक रूप से, इवन भक्ति में भी 2 सफलताएं होती है, एक भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक सफलता है कि मेरे को कितना मान सम्मान मिला, कितने लोगों को मैं सफलता प्राप्त की, कितना मैंने धन एकत्र किया। आध्यात्मिक सफलता है कितना मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ, कितना मुझे नाम में रुचि मिली, कितना मैं तृणादपि सुनी छे न भाव में जीवन बिता रहा हूँ, कितना मेरे को भगवान की स्मरण हो रहा है, कितना मुझे संसार के प्रति विरक्ति हो रही, उदासीनता आ रही। तो कॉन्स्टेंटली, जैसे अगर एक समुद्र में एक जहाज चल रहा है तो समुद्र में जहाज के कैप्टन होते हैं, देखते रहते हैं कंपास से कि जहाज कहाँ जा रहा है। अगर कैप्टन कंट्रोल नहीं करे तो जहाज घूमता रहे महीने भर और अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंचे। ऐसे हमारी जो यात्रा है स्पिरिचुअल यात्रा, उसमें हमें देखते रहना चाहिए कि कितना मैं भक्ति में गहराई में प्रवेश कर रहा हूँ, क्या मैं वास्तव में कृष्ण के करीब आ रहा हूँ, क्या वास्तव में मुझे नाम में रुचि जागृत हो रही। और ये नाम रुचि जागृत होती है भक्तों के संगति में और पुकारने से। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं, अनलेस यू क्राई फॉर कृष्णा यू कैन नॉट गेट कृष्ण। आप कृष्ण के लिए जब तक रोगे नहीं तब तक कृष्ण मिलेंगे। ये कृत्रिम आंसू नहीं है, ये असली आंसू है। जब जब भक्त को लगता है कि मुझे भगवान के बिना सब कुछ सूना नजर आ रहा है। युगायितम निमिषेन चक्षुष प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। जब भगवान कृष्ण रासलीला छोड़कर चले गए तो गोपियां सब जगह पर ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ पर है, वो पेड़ों से पूछ रहे थे, क्या नंदन कृष्ण यहाँ से गुजरे, वो जानवरों से पूछ रहे थे क्या कृष्ण को आपने देखा। इस तरह का विरह भाव, फिर गोपियां इतने आसक्त हो गए कृष्ण के विचारों में कि नकल करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई और दूसरी गोपी कृष्ण बनकर उसका वध करने लगी। एक गोपी ने अपने साड़ी का एक भाग ऊपर रखा और बोले, आ जाओ ये गोवर्धन है, इसके नीचे आ जाओ, आप घबराओ मत, बरसात से बचो। सब कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगे। तो ये विरह के फीलिंग्स हैं। एक और चीज जो प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य बताते हैं, जो चैतन्य महापुरुष स्वयं दिखाते हैं कि कितना भक्त को सावधान रहना चाहिए कि संसारी व्यक्ति का संग नहीं करें। जब चैतन्य महापुरुष जगन्नाथ पुरी में थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बताया कि एक राजा हैं, राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महापुरुष से मिलना चाहते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र लिखा कि मैं चैतन्य महापुरुष से मिलना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास आए और बोले कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन देंगे। वो डर रहे थे, वो जानते थे महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, आप बात कहो, प्रभु कहे कह तुम्ही नाही किछु भय। अब बिना भय के बोलो, लेकिन योग्य हैले करीबे, अयोग्य हैले नाही करीबे। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, ए राजा प्रताप रुद्र उत्कंठा है तुम्हारा मिली बारे चाहे, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु क्या बोले, कर्ण हस्त दिए प्रभु स्मरे नारायण नारायण। भगवान ने अपने कानों में हाथ रखा और बोले, नारायण। सार्वभौम कह के न अयोग्य वचन, व्हाट नॉनसेंस यू आर स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो। विरक्त सन्यासी हमारा राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण, आप बोल रहे हो कि मैं राजा से मिलूं, मैं सन्यासी हूं, ये ऐसा है कि एक स्त्री से मिलने के बराबर है। फिर महाप्रभु वो श्लोक कोट करते हैं जो आज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, निष्किंचनस्य भगवत भजोन्मुखस्य पारम परम जिगीमुष भवसागरस्य संदर्शनम विषय नमत योषितम वच हा हंत हंत विष्यंत भक्ष्यंतम अपि साधु। भगवान बोले कि जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है उसके लिए संसारी व्यक्ति का संग करना या भौतिकवादी व्यक्ति का संग करना वो जानबूझकर जहर खाने के बराबर है। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं कभी नहीं कर सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, देखो ये साधारण राजा नहीं है, ये राजा बहुत अच्छे भक्त हैं, ये जगन्नाथ जी के महान भक्त हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो राजा मेरे लिए काल सर्प के समान है, काष्ठ नारी स्पर्शे जैसे उपजे विकार। शास्त्र में कहा गया स्त्री का रूप है चाहे लकड़ी का भी क्यों ना हो, उससे व्यक्ति का मन भ्रमित हो जाता है। तो ये जो बोले गए श्लोक स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, क्योंकि ये जो आकर्षण है जो अपोजिट सेक्स के लिए है वही हमको संसार में बांध के रखता है। इससे मुक्त होने का तरीका क्या है? राधा श्याम सुंदर के प्रति आकर्षण बढ़ाना। जितना विग्रह के प्रति और नाम के प्रति प्रेम बढ़ेगा संसार के आकर्षण फीके लगे। तो एक बड़े राजा थे यमुनाचार्य, जो रामानुजाचार्य के गुरु के गुरु हैं, एक समय राजा रहे थे और इंद्र तृप्ति में मग्न थे, लेकिन जब वो इस्कॉन मतलब भक्ति में आ गए, तब भक्ति में आने के बाद वो क्या बोलते हैं, क्या वो श्लोक है किसी को याद है, बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, जब से मैं कृष्ण भक्ति का रस का आस्वादन कर रहा हूं तो विशेष सुख कैसा लगता है, मेरे को थूक आ जाती है। ये है भक्ति का लक्षण। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है गौर भगवान, भगवान को खुशी होती। तो महाप्रभु यहां पर बोल रहे हैं मैं कभी नहीं मिल सकता, ऐसे बात कबू ना आनी ब, यदि कही ब आमा यथा ना दिखी ब, ज्यादा आपने बोला इस तरह की बात है तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के अलालनाथ चले जाऊंगा। तब सर्व हम डर के मारे घर चले गए। और फिर राजा प्रताप रुद्र को समाचार दिया, सॉरी इम्पॉसिबल। इतने में रामानंद राय मिलने के लिए आए। रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र के अधीन थे। रामानंद राय रहते थे राजमुंडरी में, जो जो दक्षिण की तरफ है, वहां के गवर्नर थे। और चैतन्य महापुरुष रामानंद राय को बोला कि आप अपनी नौकरी छोड़ के आओ मेरे साथ जगन्नाथपुरी में रहो, हम दिन रात कृष्ण कथा करेंगे। और जब 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 रामानंद राय राजा के पास गए कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, तो राजा ने बोला तुरंत आप जाओ, आप राज भगवान की सेवा में रहो और आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जॉब सबके लिए अच्छा है, यू नो, सेवा मंदिर में और पैसे भगवान देते रहे साथ कंपनी से आता रहे। अभी मैं होता या आप होते तो ईर्ष्या होती, हाँ भगवान मुझे बोल रहे हैं तेरा मुंह भी नहीं देखना है, और मेरे अंडर जो राजा नौकरी कर रहा है या आई मीन जो मंत्री नौकरी कर रहा है उसको बुला रहे हैं, अब मैं उसको जाने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन राजा निस्वार्थ से बोले मेरा भाग्य नहीं, आप जाओ। फिर रामानंद राय इतने खुश हो गए और महाप्रभु से मिलने गए और महाप्रभु को बताने लगे कि राजा प्रताप रुद्र कितने अच्छे भक्त हैं, उन्होंने मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी और बोले कि आप बस कार्य करते रहो, भगवान की सेवा में लगो और वो आपके आपके नाम से इतने खुश हो गए। तब महाराज प्रताप रुद्र ने विनीत होकर कहा रामानंद राय को, आमी तो अयोग्य, आह तो योग्य नहीं हूं, भगवान आमे को नहीं बुला रहे, आपको बुला रहे हैं, आप जाओ। परम कृपालु तेहो व्रजेंद्र नंदन, कोन जन्मे मोर अवश्य दिबे न दर्शन। जब भक्त को दर्शन नहीं भी होते तो भक्त अभिलाषा छोड़ते नहीं है। राजा प्रताप रुद्र क्या बोले, परम कृपालु तेहो व्रजेंद्र नंदन, जो महाप्रभु हैं वही व्रजेंद्र नंदन है, व्रजेंद्र नंदन जय शशि सुत हिलो सही, बट कौन जन्मे अवश्य, इस जन्म में नहीं, कोई जन्म में तो कृपा मिलेगी मुझे। जब भगवान ने मुकुंद दत्त को बोला मुकुंद मेरे सामने नहीं आ सकते 10 लाख जन्म तक, तो मुकुंद नाचने लगे 10 लाख जन्म बाद तो दर्शन होंगे, अभी मुझे कोई कहे प्रभु जी कृष्ण प्रेम मिलेगा 10 लाख जन्म बाद, तो बोलेंगे ठीक है 9 लाख जन्म कहीं और घूम के आते हैं बाद में जपा करेंगे, वाई वेस्ट टाइम। लेकिन मुकुंद दत्त कितना पेशेंस था, सब्रता थी, भगवान बोले तुरंत उनको तुरंत लेकर आ जा। तो यहां पर राजा प्रताप रुद्र के भाव को देखकर रामानंद राय भगवान को रिपोर्ट कर रहे हैं, जितना मेरे अंदर भक्ति है वो तो एक बूंद भी नहीं है, राजा सच्चे भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि रामानंद राय इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि राजा के ऊपर कृपा कर, राजा को दर्शन दो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, रामानंद राय प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, आप तो कृष्ण के महान भक्त हो, तुमा कह जे प्रीति करे से ही भाग्यवान, जो आपसे प्रीति कर रहे वो आप भाग्यवान है। क्यों, जो भक्त से प्रेम करता है वही तो भगवान से कर पाएगा। भक्तों से जितना हमारा प्रेम है उतना ही भगवान से प्रेम है, अगर भक्तों से नफरत कर रहे हैं घृणा कर रहे हैं तो क्या भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तोमा ते प्रीति है सबार कृष्ण तारे अंगीकार कोरी बे, कृष्ण उसको जरूर स्वीकार करेंगे क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने श्लोक बताया, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्त ते जना, भगवान बोल रहे हैं आदि पुराण में, ये मैं भक्त पार्थ न भक्त, जो कहता है मैं आपका भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है। मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते भक्त तमा मता, जो ये कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ वो मेरा भक्त है, ये भगवान आदि पुराण में बोल रहे हैं। और भागवत में भगवान बोलते हैं मत भक्ता पूजा दीपम सर्वभूतेषु मन्मति, जो मेरे भक्त की सेवा कर रहे मैं ज्यादा प्रिय है। और शिवजी दुर्गा देवी को बताते हैं आराधनम सर्वेशान विष्णुर आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, कि सब आराधनाओं में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है और उससे भी अच्छा है उनके भक्तों की सेवा करना। तब सारे भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु के पास फिर से आए, क्योंकि रामानंद राय ने बहुत प्रयास किया, फिर स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी और नित्यानंद प्रभु सब आए और सब भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं मैं नहीं मिलना चाहता। लेकिन बाद में हम देखते हैं भगवान मिले, क्यों मिले? क्योंकि जब रथ यात्रा का समय आया तब राजा प्रताप रुद्र अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर, जिसका हैंडल सोने का था, अपने हाथों में झाड़ू लेके भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर, इस नम्र सेवा भाव को देखकर भगवान का हृदय, भगवान का हृदय तो हमेशा ही दयालु है लेकिन विशेष दया प्रकट होगी। भगवान ने निश्चय कि अब मैं उस पर कृपा करूं। भगवान ने इसलिए दया नहीं की क्योंकि वो राजा हैं, वो रथ यात्रा स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनका पोस्ट है। तुच्छ सेवा देखी, भगवान देखा तुच्छ सेवा। और रथ यात्रा के बीच में भी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा समय हो रहा है, रथ यात्रा के बीच में भी चैतन्य महाप्रभु ने कई बार दया दिखाई। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे रथ यात्रा के बीच में तो राजा भी देख रहे थे कोने से, राजा के और चैतन्य महाप्रभु के बीच में श्रीवास ठाकुर खड़े थे। तो राजा के सचिव जिसका नाम था हरिचंदन, उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बोला हट जाओ साइड में, राजा VIP इंपॉर्टेंट। लेकिन श्रीवास इतने मग्न थे, बार बार हाथ लगाया तो भी हिले नहीं। अंत में जब तीसरी बार हाथ लगाया तो श्रीवास पीछे मुड़े और सबके सामने चापड़ लगा दी हरिचंदन को। हरिचंदन को गुस्सा आ गया कि मैं राजा का सेक्रेटरी हूँ और थप्पड़ मार दिया, वो भी अकेले नहीं पब्लिक में, रथ यात्रा के बीच में यू नो स्टार टीवी में देखा जा रहा है, थप्पड़ मार दिया। तब उसको गुस्सा आया, वो बदला लेने जा रहे थे लेकिन राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या बोले? भाग्यवान तुमी इहार हस्तस्पर्श पाइल, कि तुम कितने भाग्य हो एक शुद्ध भक्त का हस्तस्पर्श पाइल, थप्पड़ खाइल। आपको एक महान भक्त ने थप्पड़ मारे, हमारा भाग्य नहीं। राजा बोल रहे मेरा भाग्य नहीं। और एक बार दूसरी कहानी है कि जब वो गोपीनाथ पटनायक के सिलसिले में कुछ पैसे का मामला था और चैतन्य महाप्रभु बोले मैं पूरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी में नहीं हूँ, मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से। तब राजा को रिपोर्ट मिला महाप्रभु जा रहे हैं पूरी छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख का हिसाब देना बाकी था उसके कारण। राजा बोले 2 लाख सब लोन माफ, गोपीनाथ पटनायक को बोले उसका लोन माफ और आगे से डबल सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को महाप्रभु का संग चाहिए, कोटी चिंतामणि भी देने पड़ जाए, मेरा राज्य भी त्याग दूं, मैं भिखारी बन जाऊंगा अगर मुझे भगवान गौरंगा का संग मिले। तो ऐसा जिसका भाव है वो गृहस्थ होकर भी सन्यासी के समान। हम कहानी सुनते हैं दक्षिण भारत में रामानुचार्य के जीवन में, एक बार कुछ ब्रह्मचारियों को थोड़ा लगता है कि रामानुचार्य अपने गृहस्थ शिष्यों को ज़्यादा कृपा दिखा रहे हैं, क्या कारण है? तो रामानुचार्य एक बार ट्रिक करते हैं, रात को ब्रह्मचारी जब सोए होते हैं तो धोती अदल बदल कर देते हैं और सुबह मंगल आरती में लड़ाई हो जाती है कि कहाँ चले गए, कोथा गेला मोरा धोती, है ना, लड़ाई हो जाती है। और उसी समय राजा रामानुजाचार्य अपने गृहस्थ शिष्य के पास उनको अपने आश्रम बुला के उनके पत्नी अकेले सोई होती है और उनके आभूषण चुरा लेते हैं। भक्तों को बोलते हैं आप चुराओ, और एक्चुअली वो लेटी होती है, सोई नहीं होती, उसके आभूषण चुरा रहे थे, सोचते हैं चलो मंदिर के लिए जा रहे हैं चुराने दो। तो जब वो जो डिवोटी जिसके पत्नी के आभूषण चुराए गए घर में लौटते हैं, उनके पत्नी बोलती है कि आज तो हमारे मंदिर के भक्त चुराने के लिए आए थे। तो वो सुन के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अरे आपने सब दे दिया कि नहीं? बोले नहीं मैंने एक साइड का दिया, अरे दूसरे साइड का क्यों नहीं दिया, सब दे देना चाहिए था, सब इसका, सब कृष्ण के लिए। तब रामाचार्य दिखाते हैं, देखो आप ब्रह्मचारी हैं लेकिन आपको धोती से आ सकती है, और ये राजा हैं, आई एम सॉरी, ये कितने अमीर व्यक्ति हैं, इनके सोने के आभूषण देने को। तो वैराग्य मतलब जो भी है, चाहे हम लखपति हों, करोड़पति हों, जीरोपति हों, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ भगवान को अर्पण कर। और एक लास्ट घटना, जब राजा प्रताप रुद्र रथ यात्रा चल रही होती है और भगवान की रक्षा के लिए तीन सर्कल बनाए होते हैं, तो भगवान पहला सर्कल नित्यानंद प्रभु, दूसरा सर्कल दूसरे स्वरूप दामोदर, तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र खुद, और महाप्रभु छलांग लगा के एक सर्कल दो सर्कल पार करके राजा के गोद में गिर जाते हैं अपनी इच्छा से। और जैसे उठते हैं ऐसा दिखाते हैं मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ गिरा हूँ, जैसे उठते हैं फिर राजा को पहचान लेते हैं, अच्छी छी 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 विषय स्पर्श हैला अमार, मैंने पहले बताया था राजा को टच नहीं कर। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान अपनी इच्छा से मेरी गोद में गिरे और फिर छी 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 कर रहे क्या। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया कि भगवान आप पे कृपा करना चाहते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते कि आप पे कृपा करें। लास्ट घटना होती है जब रथ यात्रा में रथ रुक जाता है, बालगंडी में सब भक्त विश्राम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे लेटे होते हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, हे राजन अब जाओ, अब इस समय भगवान की कृपा प्राप्त करो, जाओ उनके पैर मसाज करो, लेकिन सावधान राजा के वेश में मत जाना, वो सादे कपड़े पहन के जाना और उनके पैर मसाज करो। तो राजा प्रताप रुद्र पैर मसाज कर रहे होते हैं और वो कौन सा श्लोक गा रहे होते हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंती ये पूरी दाज। इसका अर्थ है कि कृष्ण कथा जो है सारे अमंगल को दूर करने वाली है, और ये कृष्ण कथा भौतिक दुनिया के ताप को गर्मी को दूर करने वाली है। और जब जब जो ये कृष्ण कथा दूसरों को बांटते हैं वो उदार हैं। ये सुन के महाप्रभु इतने खुश हो गए, वो खड़े हो गए और राजा को गले लगाया और बोले, भूरिदा भूरिदा आप उदार हो, तुम ही कौन, आप कौन हो। राजा ने क्या जवाब दिया, राजा ये नहीं बोले मैं राजा प्रताप रुद्र हूँ, सब रथ यात्रा मैं ही तो करवा रहा हूँ, आप बोर्डिंग देखा नहीं मेरा। राजा ने क्या जवाब दिया, किसी को याद है वो श्लोक, ये लास्ट श्लोक है आज के प्रवचन का, सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे पीछे बोलिए, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्येर भृत्य कोर ए मोर आश। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, आई एम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, मैं आपके दासों का दास, और बस मेरा यही अभिलाषा है कि मैं दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि दिस इज द एम्बिशन ऑफ अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त यही चाहता है कि भगवान की सेवा नहीं, भगवान के सेवक की सेवा नहीं, सेवकों की सेवकों की सेवा। ध्रुव महाराज से पूछा गया क्या चाहिए, आपकी सेवा नहीं, आपके सेवकों की सेवा। प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा प्रहलाद क्या चाहिए, मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे अंधे कुएं से निकाला, मैं उनकी सेवा करना था। और ऐसा ही जब जब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और श्रीधर खोलावेचा, श्रीधर खोलावेचा से पूछा गया क्या चाहिए, बस दासों के दासों। तो सब ये भी हम सब यही प्रार्थना करते हैं, सब लोग दो मिनट आंख बंद कर, कि हम बस राधा श्याम सुंदर के दास बने और हर समय भगवान का नाम लेते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो 10-12 दिन बचे हैं सब लोग जब एक्स्ट्रा करिए, अगर आप 16 कर रहे हैं तो 25 करिए, 25 कर रहे तो 32 कर रहे हैं, और जितना भी होते करते रहिए, और निद्रा और भोजन कम करते हुए हरि भक्ति ज्यादा करें। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सारंग ठाकुर प्रभु कुछ कमेंट्स बोलना चाहते, हरे कृष्ण।